الحمد لله وكفى وسلام على عباده اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ کی کتاب امور خانداری میں حسن انتظام، اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے سب سے پہلے اس کتاب میں سے پڑھنا، وہ ہے انتظام خانہ، یعنی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ. اور ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ میں بھی سب سے پہلے حضرت نے طہارت کے عمومی موضوع کے اوپر بات فرمائی، اس میں بچوں کی تربیت کے بھی متعلق چند اہم نکات آ گئے، اور پھر اس کے بعد گھر کو آرگنائز کرنا یعنی منظم کرنا، یہ ہم نے پڑھا ساری تفصیل کے ساتھ، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر گھر کی صفائی اور ستھرائی. صفائی پڑھنا شروع کیا، اور اس میں کچن کی صفائی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹیبل وغیرہ کی صفائی ہم پڑھ چکے ہیں، کارپیٹ کی صفائی یہ آخری عنوان تھا جو کہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر پڑھا. تو صفائی 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 زیادہ صفائی کے اوپر، اور صفائی سے بھی پہلے کون سا والا لفظ آتا ہے، گھر کی صفائی. ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک تو یہ دو کی ورڈز ہیں ان تمام ڈسکشنز کے اندر، کہ نمبر ون گھر، اور پھر نمبر ٹو صفائی. تو سب سے پہلے گھر کی بات ہونی بار بار ضروری ہے، کہ گھر کی صفائی تو عورت اسی وقت کرے گی جبکہ وہ اپنے گھر میں ہوگی. اگر وہ گھر میں ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ گھر کی صفائی کیسے کر سکتی ہے، باہر ہی کی صفائی کر رہی ہوگی، پھر وہ جہاں جاتی ہے جاب کرنے کے لیے یا کسی اور کے گھر میں جاتی ہے، وہ بیچاری جو صفائی کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ تو عموماً بہت زیادہ مجبوری کی وجہ سے ہی ہوٹل میں جا کے صفائی کر رہی ہیں، کسی کے گھر میں جا کے صفائی کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے دفتروں وغیرہ میں جو جانا آنا چلتا رہتا ہے تو پھر تو گھر کی صفائی تو نہیں ہوگی، وہیں کی کسی معاملے کی صفائی ہوگی، ان کے کسی بزنس کی صفائی ہوگی، ان کی جو ہے وہ ٹریڈ کی صفائی ہوگی، ان کی مارکیٹنگ کی صفائی ہوگی، ان کی سیلز کی صفائی ہوگی، یا اور نہ جانے کس کس چیز کی صفائی ہوگی. اپنے گھر کی صفائی تو اسی وقت ہوگی جبکہ گھر کے اندر ہوگی. عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا، جب اس مقام کو چھوڑ کر کے باہر کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹ دینا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو الٹ دیں گے، جیسے کہ عبرت کے ہزارہا نمونے اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ عبرت کا نمونہ آیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹا ہے، اور اس کا اصل قصور جو ہے وہ عورتوں پر نہیں بلکہ مردوں پر ہی آتا ہے، انہوں نے ہی اصل میں ترتیب کو الٹا. اور چونکہ عورت جو ہوتی ہے مردوں کے تابع ہوتی ہے، تحت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو جب مرد ترتیب کو الٹتے ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ عورت کے اوپر بھی آتا ہے. اب جو عورت اللہ سے جڑ کے رہتی ہے تو وہ مردوں کی ترتیب کے الٹنے کے باوجود وہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے اوپر باقی رہتی ہے، لیکن یہ وہی عورت ہو سکتی ہے کہ جس کا اوپر سے مضبوط تعلق ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہونا، پھر وہ اپنے امیڈیٹلی اوپر جو مرد ہوتا ہے اس کے گڑبڑ کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، عورت کے امیڈیٹلی اوپر کون اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا شوہر بنایا یا اس کا باپ بنایا، شادی سے پہلے اس کا باپ، شادی کے بعد اس کا شوہر، لیکن یہ تو امیڈیٹلی اوپر ہے نا، بالکل فوراً اوپر. پھر ان کے اوپر کون ہے، ان کے بھی تو اوپر ہے نا کوئی، تو ان کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول ہوتے ہیں. تو بھائی اگر اوپر والا آپ کا मसले को खराब कर रहा है, तो उसके ऊपर वाले से ताल्लुक क्यों नहीं बनाया वो आपने? उसके ऊपर वाले से आपने क्यों नहीं ताल्लुक बनाया? अगर नहीं बनाया तो आपका कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। ठीक है, तो जो औरतें ऊपर वालों से ताल्लुक बना के रखती हैं तो फिर उनकी तरतीब नहीं उलट पाते ये मर्द, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक नहीं बनाया होता है तो फिर इनके ऊपर वाले जो मर्द होते हैं, चाहे वो अब्बू हों चाहे वो शोहर हों, वो तरतीब उलटते हैं तो इनकी भी तरतीब उलट जाती है। ठीक है, तो अल्लाह की बनाई हुई तरतीब तो नहीं उलटती, इनकी अपनी जिंदगी की तरतीब उलट जाती है और फिर इसके नतीजे में वो इबरत का नमूना बन जाती हैं। बेशक ना मानती हूँ कि मैं इबरत का नमूना बन गई हूँ, मानता कौन है? मानता, मानने वाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माने को तो तब ना जब आईना देखेंगे, आईना ही नहीं देखते तो मानेंगे क्यों? ठीक है, तो मानने वाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला ने तो तरतीब बनाई है, दुनिया में भी उसको अल्लाह ताला ने एनफोर्स किया हुआ है और आखिरत में तो इसको बिल्कुल खुल करके एनफोर्स कर देंगे और तब खुल के सामने आ जाएगा कि हमने क्या किया था। तो घर की सफाई के लिए घर होना शर्त, जो भी इसको तोड़ता है फिर वो बहुत बुरा उसका अंजाम होता है। दुनिया में भी अल्लाह दिखा देते हैं अक्सर औकात, लेकिन दुनिया में अल्लाह का उसूल नहीं है कि हर मरतबा दिखाएं भी। आखिरत में तो अल्लाह ताला हर एक का ये मसला जो है ना वो खोलेंगे कि कैसे इसने घर को तोड़ा था। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है सफाई, ठीक है, घर की फिर सफाई। तो सफाई का मामला क्या है कि सफाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता, राइट। सफाई जो है ये मशरू, ये शर्त है, सफाई शर्त है। ठीक है, जो अच्छे काम होते हैं ना वो सफाई के बाद आते हैं, यानी सफाई पहला अच्छा काम है। मिसाल के तौर पर नमाज सबसे अजीम इबादत है, सबसे अजीम इबादत है ना, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, कि नमाज तो मोमिन की मेराज है, यानी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन नमाज की शर्त क्या है? तहारत। अगर तहारत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। आप खड़े हो जाएं बड़े खूबसूरत अंदाज से, आप जो है वो अपना जिलबाब वगैरह अबाया वगैरह सब पहनने, दुपट्टा सुपट्टा सब ओढ़ने, अल्लाहु अकबर की तकबीर कह करके हाथ बांधने और खूबसूरत तिलावत के साथ जो है वो सूरह फातिहा भी पढ़ें और बाकी सूरतें भी पढ़ें और बेहतरीन जो है लंबा सा रुकू करें, फिर लंबा से जो है वो सजदा करें, ठीक है, लंबी सी सजदा करें, लंबा सा सजदा करें और खूब अच्छे से जो है वो तहियात पढ़ें, सब कुछ कर लें, क्या नमाज होगी? राइट, क्या नमाज होगी? नहीं होगी, क्योंकि तहारत नहीं हासिल करी, तहारत शर्त थी। तो तहारत जो है ना इसको अल्लाह ताला ने शर्त बनाया है नेकी के कामों से फायदा उठाने के लिए, इबादत से फायदा उठाने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो ऐसी दलील है जिससे कि कौन इनकार कर सकता है? कोई कर सकता है आप में से इससे इनकार? ठीक है, अच्छा, इन्होंने सवाल भी लिख दिया पिछली वाली बात के ऊपर कि औरत की तरतीब नहीं उलटती मगर बच्चों की उलट जाए तो क्या उसकी सजा औरत को भी मिलेगी? भाई अगर औरत का उसमें हाथ था तो फिर तो उसको मिलेगी सजा, लेकिन अगर औरत का हाथ नहीं था बच्चों की तरतीब उलटने में तो फिर अल्लाह ताला क्यों सजा देंगे किसी ऐसी अपनी बंदी को कि जिसका के कसूर नहीं था? राइट, ऐसी बेवकूफी के सवाल भी करने नहीं चाहिए। तो पता है ना, मतलब खामखा का ना अपने रीएश्योरेंस लेना, ठीक है भाई, अल्लाह को क्या नहीं पता आप क्या कर रही हैं या क्या किया आपने माजी के अंदर? अल्लाह को नहीं पता ये बात, मुझे तो नहीं पता, राइट, किसी को नहीं पता, हत्ता कि आपके अपने शेख को नहीं पता कि आपने क्या किया है, ठीक है, अल्लाह को तो पता है ना कि आपने क्या किया है। तो फिर इतना तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि अल्लाह को पता है, और इतना भी नहीं पता आपको कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते किसी के ऊपर, अल्लाह ताला जालिम है? नहीं है ना जालिम, मानते हैं ना सब अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला जालिम नहीं है, ठीक है। तो किसी जिसने उसको कसूर नहीं किया उसको ऐसे ही उठा करके सजा दे देंगे? ठीक है, तो बहरहाल चलिए, ठीक है, पूछ लिया, मिल गया। अच्छा, तो तहारत जो है ना ये शर्त है। अब देखें इतनी अहम है ये तहारत कि नमाज जैसी इबादत नहीं होती। एक और मर्दों की मजलिस में बैठे हुए थे, जुम्मे की बात जो होती है, मर्दों में निजी मजलिस होती है, प्राइवेट मजलिस जिसको हम कहते हैं, तो अपने हजरत को भी इसी तरीके से करते हुए देखा। तो उसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं, सवाल जवाब भी होते हैं उसके अंदर। तो उसमें भी यही टॉपिक इस फ्राइडे को भी निकला था कि अल्लाह ताला ने अजीब मामला ये किया, जिसको कि हमारे मशायख फिर हमें समझाते हैं, ठीक है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना कुरान मजीद के अंदर तज़किए का तज़किरा किया। तज़किया, तज़किया क्या चीज़ होती है? सफाई सुथराई, तज़किया, सफाई सुथराई। और सफाई सुथराई भी किस तरह की सफाई सुथराई? तज़किया, तज़किया किस किस्म की सफाई सुथराई? क्या कहते हैं? ता सौद फा या हा, तस्फिया कहते हैं। जब ऊपर से डस्टिंग होती है ना, उसको तस्फिया कहते हैं। अल्लाह ताला ने लफ्ज तज़किया इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ताला ने लफ्ज सॉरी तस्फिया इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ताला ने लफ्ज तज़किया इस्तेमाल किया। तज़किया जो होता है ना, ये निचोड़ने को कहते हैं, ये अंदर की सफाई को कहते हैं, ठीक है ना, ये अंदर की सफाई को कहते हैं, ये निचोड़ने को। हम फिजिकली अगर किसी कपड़े का तज़किया करें ना, तो कपड़े के ऊपर से डस्टिंग करने को तज़किया नहीं कहते, बल्कि उसको निचोड़ करके उसके अंदर से जो नजासत होती है उसको बाहर निकाल देना, निचोड़ करके पानी के साथ, उसको तज़किया कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीब मामला फरमाया कि कुरान मजीद अपने कलाम के अंदर अल्लाह ताला ने तज़किये का जिक्र जो है नबी अलैहिस्सलाम की जो दुनिया में भेजे जाने की वजूहात है ना, उन वजूहात में एक वजह कि ये सहाबे कराम का उम्मतियों का तज़किया फरमाएंगे। क्या करेंगे? तज़किया फरमाएंगे, ठीक है। अब इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर तीन जगहों पर किया, तीन जगहों पर, कम से कम जहां तक मुझे याद है तीन जगहों पर, ठीक है, जहां पे फरमाया कि यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब है। कई दफा आपने शायद सुनी भी होगी ये वाली बात। अच्छा, इन तीन जगहों में से जो सबसे पहली जगह है वो सूरह बकरा के अंदर है, ठीक है, सूरह बकरा के अंदर है। उसमें अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किस अंदाज से फरमाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के जरिए से फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ खलीलुल्लाह के। फरमाते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, कि ए हमारे रब, इनके दरमियान इन्हीं में से एक रसूल खड़ा फरमा दीजिए, यत्रु अलैहिम आयातिका, जो के इनके ऊपर यानी इनके सामने आपकी आयात की तिलावत करें, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और इनको आलिम बनाए, आलिमा बनाए, राइट, इनको हलाल हराम का इल्म सिखाए, और इनको हलाल हराम का इल्म सिखाए, युअल्लिमुहुमुल किताब, आलिम बनाए, आलिमा बनाए, हलाल हराम का इल्म सिखाए, और जो है वो मसाइल सिखाए और इस किस्म के उलूम सिखाए, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला ने किताबों के अंदर महफूज भी फरमाए, वो उलूम सिखाए, वल हिकमा, और इनको हिकमत भी सिखाए, हिकमत की तालीम भी दे, यानी अपनी सुन्नतें सिखाए, ठीक है, कि काम को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने से बेहतरीन फायदा होता है, ऐसे करना जो है वो मैक्सिमाइज करता है बेनिफिट को, ये कहते हैं सुन्नत। तो वह युअल्लिमुहुमुल हिकमा, हिकमत भी सिखाए, क्योंकि उसका अताव जो है वो हिकमत पर भी आ रहा है, वह युज़क्कीहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ जो मांगी उसमें सबसे आखिर में तस्किरा किया और इनका तस्किया फरमाए, यानी इनको निचोड़ निचोड़ करके इनके नफ्स का तस्किया भी फरमाए। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप तो सबसे जबरदस्त हैं और सबसे हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का तज़किरा फरमाया, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो दुआ मंगवाई उसमें तज़किये को सबसे आखिरी नंबर पे रखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी ना, अब जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में बात डाली गई कि तुम ऐसे दुआ मांगो, कि सबसे पहले जो है वो यत्रु अलैहिम आयातिका, ये मांगो कि वो रसूल आकर के आयात की तिलावत करे, फिर ये मांगो कि वो इनको किताब का इल्म सिखाए, और फिर ये मांगो कि वो उनको हिकमत का इल्म सिखाए, और आखिर में ये मांगो कि वो उनका तज़किया करे। कुरान मजीद में सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस पैराए में तज़किये का जिक्र किया, सबसे आखिर में, लेकिन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की शक्ल में जिक्र किया। फिर उसके बाद कुरान मजीद में जब अगली दफा इसी बात का जिक्र आता है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीन, तहकीक के अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ऊपर एहसान फरमाया, इज बअस फीहिम रसूल मिन अनफुसहिम, जब उनके दरमियान उन्हीं की जानों में से एक, उन्हीं में से एक रसूल को मबऊस फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उनके ऊपर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है, वो युज़क्कीहिम, वो युज़क्कीहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, नबी अलैहिस्सलाम इस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा कुरान मजीद में पहले फरमा करके अब उसकी तरतीब को चेंज कर रहे हैं, अब उसकी तरतीब को चेंज कर रहे हैं, अब ये नहीं कह रहे, और उनको उलूम पढ़ाते हैं, उनको उलूम सिखाते हैं, बल्कि फरमा रहे हैं वो युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया फरमाते हैं, उसके बाद फरमाया वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब और हिकमत का इल्म देते हैं, पढ़ाते हैं, व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले तो वो लोग सरीह गुमराही में थे, सरीह गुमराही में थे। ठीक है, तो अब कुरान मजीद में दूसरी जगह जब अल्लाह ताला उनकी दुआ की कबूलियत का तज़किरा फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया अपने रसूल को भेज करके, तो उसमें तज़किये को यतरू अलैहिम आयाती के बाद रख रहे हैं और युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा से पहले रख रहे हैं। क्या मतलब कि तज़किया, हमारे मशायख जिनको अल्लाह ताला ने फिर इसकी फहम अता फरमाई, वो इस पॉइंट को कैसे लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने तज़किये को पहले रख दिया और इल्म को बाद में रखा। क्यों? इसलिए कि अगर तज़किये के बगैर इल्म हासिल करोगे तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा, बल्कि दूसरों के लिए मुसीबत बन जाएगा, दूसरों के लिए मुसीबत भी बन जाएगा, तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन जाएगा, दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि इस इल्म से अब तुम्हारे अंदर अकड़ आ जाएगी, अब इस इल्म से तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा तस्किया नहीं हुआ है, या तुम्हारा तस्किया साथ साथ हायर प्रायोरिटी के ऊपर नहीं चल रहा है, लोअर प्रायोरिटी पे चल रहा है तस्किया, हायर प्रायोरिटी पे तस्किया नहीं, बल्कि हायर प्रायोरिटी के ऊपर तुम्हारा इल्म हासिल करना चल रहा है, तो अब ये इल्म तुम्हें मुतकब्बिर बनाएगा, राइट, और अपने जात से मुहब्बत करने वाला उजुब के अंदर मुब्तला करेगा। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर भी हमें साफ इशारा दिया, और हमारे मशायख ने इशारे को ऐसे ही लिया कि देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत तज़किये को भी तालीम से फायदा उठाने की शर्त बना रहे हैं, जिस तरह नमाज से फायदा हासिल करने की शर्त तहारत को बना रहे हैं, पाकीजगी को बना रहे हैं। अगर तहारत और पाकीजगी नहीं होगी, नमाज जैसी इबादत भी कर लोगे तुम्हें फायदा नहीं होगा, उसी तरह तहारत नहीं हासिल होगी तुम्हारे बातिन की, तज़किया जिसको कहते हैं, तो उलूम के तुम अंबार इकट्ठे किए चले जाओगे लेकिन तुम्हें नुकसान होगा, तुम सिन्फ़े आहन तो बनोगे, सिन्फ़े नाजुक नहीं बन सकोगे, सिन्फ़े आहन बन जाओगे, अकड़ आ जाएगी, लोहा सरिया आ जाएगा गर्दन के अंदर, गर्दन में सरिया आ जाएगा, सरिया किसका बना होता है, लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा किया, जिसमें पहले इल्म का बाद में तज़किये का, लेकिन जब अपनी तरतीब बताई कि मैंने रसूल को मबऊस फरमाया, उसका दो दफा तज़किरा किया कुरान मजीद के अंदर, राइट, और फिर सूरह जुमा के अंदर दोबारा फरमाते हैं, हुवल्लज़ी बअथा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ फिर जब दोबारा जिक्र करते हैं और फिर यही वाली तरतीब री एनफोर्स करते हैं, री एनफोर्स करते हैं कि देखो हमने जो रसूल भेजा ना इन उम्मीदीन के अंदर, जो बिल्कुल अपनी फितरत के ऊपर लोग होते थे, यानी जाहिरी तौर पर भी, और जिनको के ऊपर से उलूम ने जो है वो खराब नहीं किया था। यहाँ उम्मीदीन का मतलब क्या है, या उम्मीदीन का मतलब जो हम कहते हैं ना अनलेटरेड, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने उसको ऐसा अनलेटरेड जाहिल नहीं के तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि वो बिल्कुल यानी अनऑल्टर्ड किस्म के लोग थे, अनऑल्टर्ड किस्म के, जो जो उनके बाहर के असरात से जो है ना वो बड़े महफूज थे। ना रोमन्स का उनके ऊपर असरात पड़े थे, ना पर्शियंस के उनके ऊपर असरात पड़े थे, अरब के लोग ना ये रोमन्स के अंडर आए थे, ना ये पर्शियंस के अंडर आए थे, ना ये जो है वो हबशियों के अंडर आए थे। ये बिल्कुल जो है ना वो इन असरात से पाक साफ थे, जैसे कि अम्मी के अंदर से कोई बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है तो अम्मी के अलावा और किसी का असर उसके ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो फिर से जो है वो इस बात का जिक्र किया, तज़किया पहले, इल्म और हिकमत बाद। अच्छा, तीन तीनों दफा जिक्र कर देते इस तरह से, आप बताएं। अब तो आज की क्लास तो इसी मौजू पे चल पड़ी है, सफाई वफाई बाद में, ठीक है, अल्लाह का घर साफ बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अभी पहले जो है ना ये बताएं कि अगर अल्लाह ताला तीनों आयतें जिनके अंदर रसूल का जिक्र है, रसूल के बेसत के मकासद का जिक्र है, तीनों आयतों के अंदर यही तरतीब बता देते, इब्राहिम
बिल्कुल
अलैहिस्सलाम की दुआ में भी यही तरतीब रख देते, क्या होता? अपन म्यूट कर लें, आपके घर की आवाज हमें नहीं चाहिए, ये एडमिन साहब आप इनको जी। तो अगर तीनों आयतों के अंदर यही तरतीब रख देते अल्लाह ताला, ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते उसमें भी ऐसी ही दुआ मांग लेते कि यतलु अलैहिम आयाति ही आयाति का वही युज़क्की हिम, ठीक है, उसमें भी ऐसी तरतीब रख लेते, तो फिर क्या होता? जी आपसे सवाल है, उम्मीद है कि इतनी यहां तक जो बात हुई है वो किसी को तो समझ में आई होगी इंशाल्लाह। तो उसका जवाब आप सबसे फिर पूछ रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला तीनों आयतों के अंदर एक ही तरतीब रख लेते तो क्या होता? पहली आयत के अंदर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं ना, सूरह बकरा के अंदर जो आयत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं कि आप जो है वो इनमें अपना नबी पैदा फरमा दीजिए, ठीक है, तो उसमें दुआ ऐसे ही मांगते कि वो आपकी आयात तिलावत करें इनके सामने, और जो है वो इनका तज़किया करे, और युज़क्कीहिम वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला सूरह आले इमरान के अंदर जिक्र फरमाते तो वहां पर भी यही तरतीब रखते थे, और फिर सूरह जुमा के अंदर जब इस बात का जिक्र फरमाते तो उसके अंदर भी यही तरतीब रखते थे, पहले तज़किया, फिर उसके बाद इल्म, फिर उसके बाद हिकमा। लेकिन ये क्या किया अल्लाह ताला ने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दुआ मंगवा रहे हैं, उसके अंदर इल्म का तज़किरा पहले और फिर उसके बाद तज़किया का तज़किरा, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ऐसा करने में क्या हिकमत हो सकती है? क्या इशारा मिलता है इसके अंदर? जी नहीं, मैं ही यकीनन बात सही तरह से समझा नहीं पाया हूंगा, अपना ही कसूर है, कसूर अपना ही, ठीक है, तो चूंकि कसूर हमारा ही है तो फिर जवाब भी फिर हम ही दे देते। इन्होंने जवाब दिया सिचुएशन एंड सलाहियत, ये क्या बात हुई, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं, तो इसकी हिकमत का पता नहीं चलता। तो नहीं, अच्छा जवाब है, इसकी हिकमत का पता नहीं चलता। क्या मतलब? जिसके पास इल्म होगा वे तज़किया के लिए तैयार हो, यार ये तो इल्म हासिल करने के बाद ही तज़किया होगा, इल्म हासिल के बिना तज़किया नहीं हो सकता भाई। तो ये तीनों आयतों के अंदर इसी तरह से बता देते हैं ना कि पहली आयत में तरतीब को पहले गलत तरतीब बयान करनी, फिर दो आयतों के अंदर तरतीब को सही करना, इसकी हिकमत पूछ रहे हैं आपसे। पहले गलत तरतीब बयान करी, अल्लाह ताला ने खुद ही बयान फरमाई ना कि जी पहले जो है वो इल्म और हिकमत की तालीम, फिर आखिर में तज़किया, तो फिर उसको ठीक कर रहे हैं। कि अल्लाह के नजदीक इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो भाई जब तीनों आयतों में वही तरतीब होती तो फिर अल्लाह की प्रायोरिटी हमें पता चल जाती है ना, कि अल्लाह के नजदीक प्रायोरिटी जो है वो यतरू अलैहिम आयाती ही की है, फिर उसके बाद जो है वो तज़किया की है, फिर उसके बाद जो है वो उलूम और हिकमत की तालीम की है। वो तो तीनों आयतों में अगर एक ही तरतीब होती तो उससे भी वो प्रायोरिटी पता चल जाती। ठीक है, देखें, इट वॉज पॉसिबल, ये मुमकिन था कि जो गहरी नजर रखने वाले हैं वो तो इसको समझ लेते, बहुत गहरी नजर रखने वाले तो इस बात को समझ लेते कि तज़किया जो है वो पहले होगा तभी उलूम की से फायदा हासिल होगा, ठीक है ना, वरना उलूम से जो है वो नुकसान होगा, जैसे कि बनी इसराइल को नुकसान हुआ। देखें, अब ये देखें ना कि बनी इसराइल का तज़किरा हमने क्यों कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कर दिया। सूरह जुम्मा के अंदर जहां पे ये वाली आयत है उसके फौरन बाद बनी इसराइल के उलूम का भी तज़किरा है, ठीक है ना, उसके फौरन बाद बनी इसराइल के उलूम का भी तज़किरा है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुल लदीन हुम्मिलु तौराता, उन लोगों की मिसाल जो कि तौरात का इल्म, तौरात क्या है, आसमानी किताब, उसका इल्म उन्होंने उठाया हुआ है, सुम्मा लम यहमिलूहा, फिर उसके बाद उन्होंने उसको नहीं उठाया, कमसलिल हिमार, उनकी मिसाल तो गधे जैसी है, यहमिलु असफारा, राइट, उनकी मिसाल तो गधे जैसी है। तो इल्म के अंबार थे बनी इसराइल के पास, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तज़किये वाली बात को जिक्र करके सूरह जुमुआ के अंदर हुवल लज़ी बअथ फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, ठीक है। इसके बाद एक आयत छोड़ करके अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि दो आयतें, ये जो बनी इसराइल थे ना जिन्होंने उलूम के अंबार अपने ऊपर जमा किए हुए थे, इनकी मिसाल तो गधे जैसी है, ठीक है। तो भाई तीनों आयतों के अंदर यही तरतीब जिक्र कर देते, और खास तौर पर सूरह जुमुआ के अंदर तो फिर गधे का भी जिक्र कर दिया, बनी इसराइल के उलमा के साथ साथ गधे को भी जिक्र कर दिया, तो फिर तो बात पूरी हो जाती है ना। लेकिन जो गहरी नजर रखने वाले हैं, सवाल का जवाब ये है कि जो गहरी नजर रखने वाले हैं ना वो तो बात को समझ लेते, लेकिन जो हमारी तरह के उमूमी नजर रखने वाले हैं, सुपरफिशियल नजर रखने वाले हैं, उनको फिर भी एहतमाल था कि दे वुड मिस आउट ऑन द इम्पोर्टेंस, दे वुड मिस आउट ऑन द इम्पोर्टेंस, वो हो सकता है इग्नोर कर जाते इसकी जितनी अहमियत है उतनी अहमियत ना दे पाते उसको, जितनी अहमियत ये डिजर्व करती है बात उतनी अहमियत ना दे पाते। अल्लाह ताला ने पहले दूसरी तरतीब का तस्करा किया और फिर उसके बाद सही तरतीब का तस्करा किया, ताकि एक बच्चा भी हमारे जैसा भी उलूम में जो बच्चा होता है, राइट, हमारे जैसा भी जो है वो भी इस बात को पहचान जाए कि नहीं, देर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल हियर, देर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल हियर, ठीक है, कि जी ये जो है ना तज़किया पहले जरूरी है, इल्म जो है वो फायदा मंद, इल्म भी जरूरी है, इल्म की जरूरत से कौन इनकार कर रहा है, इल्म की अहमियत से कौन इनकार कर रहा है, हिकमत की अहमियत से कौन इनकार कर रहा है, ठीक है। इन्होंने माशाल्लाह, आपका ताल्लुक हमारे शहर से तो नहीं है कहीं, हमारे शहर में सबसे ज्यादा होता है इस तरह के, ठीक है। हजरत इब्राहिम की कौम के पास किताब का कोई इल्म नहीं था, इसलिए पहले इल्म का जिक्र किया, माशाल्लाह क्या बात है, आप किताब का कोई इल्म नहीं था, नूह अलैहिस्सलाम क्या लेकर के आए थे, सबसे पहली शरीयत जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, ठीक है। तो किताब क्या चीज होती है, किताब का मतलब ये कागज के सफ़े नहीं होते, किताब का मतलब कागज के सफ़े नहीं होते, ठीक है, इसके इस बात पे भी चंद क्लासेस पहले ही बहुत ज्यादा बात होती है, बल्कि सूरह मायदा की क्लास के अंदर और बल्कि सूरह अनाम की क्लास के अंदर भी इसके ऊपर बात हो चुकी है ना, कतबार, ربکم علیہ الرحمہ. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی کتاب کا علم نہیں تھا. نوح علیہ السلام والے کیا تھے پھر؟ اور نوح علیہ السلام کے بعد جو ہود علیہ السلام آئے, اور جو صالح علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے, تو وہ کیا کیا تھا پھر؟ وہ علم نہیں تھا, کچھ کچھ اور چیز تھی ان کے پاس. آپ کا ہمارے شہر سے آپ کا تعلق ہے, بس ہمارے شہر میں ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے باقی جن کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا, ضرورت بھی نہیں پتا کرنے کی جو ہمارے شہر کو نہیں جانتے. اچھا, تو صفائی کی یہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے, تو اب گھر کی بھی صفائی جو ہے نا, وہ بھی صفائی ہوگی تو پھر گھر کے اندر چیزیں اچھی لگیں گی. گھر جو ہے وہ سکون کا سبب بنے گا گھر والوں کے لیے, فائدے کا سبب بنے گا گھر والوں کے لیے, جب گھر کی صفائی ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ پری ریکویسٹ ہے, یہ شرط ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کچن کی صفائی ہم پڑھ چکے, اور جو ہے ٹیبل وغیرہ کی صفائی بھی ہم پڑھ چکے, اور کارپیٹ کی صفائی بھی ہم پڑھ چکے. 5 منٹ رہ گئے, تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بات پیچھے رہ گئی تھی کارپیٹ کی صفائی میں, کہ پاؤڈر سینٹس بھی آتے ہیں کارپیٹ کے اوپر سپریڈ کر دینے والے, تو خصوصاً اگر کوئی سپلز وغیرہ ہو جائیں, جیسے بچوں کو الٹی ہو گئی, متلی ہو گئی, یا کوئی اور اس قسم کا. ہمارے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, ان کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے, ان کا جو ہے وہ آخری عمر میں, بلکہ آخری عمر میں آخری کے 4-5 سال ان کے جو ہیں وہ یورین بیگ کے ساتھ گزرے ہیں. تو چل بھی نہیں سکتے تھے, واکر سے چلتے تھے, اور ان کے ساتھ یورین بیگ مستقل لگا رہتا تھا, اسکے بغیر ان کا گزار ہی نہیں ہو سکتا تھا. پروسٹیٹ وغیرہ کے مسئلے تھے, ڈاکٹر صاحب کا یہ حکم تھا, کون ہوتے ہیں بھی اس میں آگے پیچھے کہنے والے, تو یورین بیگ لگا ہوتا تھا. اب یورین بیگ کے جو ہے نا, وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا, ہر تھوڑے دن کے بعد اس کا جو ہے وہ جو نوب ہوتا تھا وہ لوز ہو جاتا تھا, کہیں سے پھنس جاتا تھا وہ, کبھی کہیں سے نکل رہا ہے, کبھی کہیں سے نکل رہا ہے, تو لیکس ہوتے تھے. تو شروع میں تو ہمارے گھر میں کارپیٹ ہی تھا, تو اب اس کو رگڑ رگڑ کر کے صاف کر رہے ہوتے تھے, تو پھر کسی نے بتایا کہ جی اس کے اوپر پاؤڈر جو ہے وہ چھڑک دیں, تو پھر سمیل وغیرہ کا بھی جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا, یعنی کوئی احتمال ختم ہو جائے گا اسمیل کا. ورنہ تو صفائی اتنا اچھے سے کرنا ہوتا تھا کہ اسمیل کا احتمال رہے ہی نہیں, پھر بھی پاؤڈر وغیرہ اس کے اوپر چھڑک دیتے تھے. لیکن بالآخر جو ہے وہ جب جیسی موقع ملا, کارپیٹ کو ختم کروا کر کے وائنل فلورنگ ڈلوا لی. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر جو ہے وہ معاملہ آسان, اگرچہ کہ اس کے اوپر یعنی اسپریڈ زیادہ ہو جاتا تھا, کیونکہ کارپیٹ پہ تو پھر آپ کا ایبزارب ہو جاتی ہے نا, کارپیٹ جلدی سے ایبزارب کر لیتی ہے, لیکن وائنل فلور تو پھر وہ ذرا ہارڈ چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر اسپریڈ زیادہ ہو جاتا تھا, لیکن صفائی کرنی جو ہے وہ کافی آسان ہو گئی تھی. تو اس طرح سے پھر پچھلی کلاس میں آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ بھائی کوئی یا تو ماربل کا فلور رکھ لیں, یا ٹائلز لگا لیں اگر ماربل نہیں ہے, موزیک فلورنگ ہوتی ہے, یا جو ہے وہ ہارڈ ووڈ فلورنگ ہوتی ہے, یا اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہماری طرح تو وائنل فلورنگ لگا لیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے, اور بھی بہت سارے فائدے بتائے تھے. اب ایک اور نیکسٹ جو ٹاپک ہے, بیڈ روم کی صفائی. ٹھیک ہے, بیڈ روم میں جہاں پر کے انسان سونے کے لیے جاتا ہے, آرام راحت پانے کے لیے جاتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ اگلی بات ہے بیڈ روم کو صاف کرنا. ایک عادت بنائیں کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو اٹھتے ہی اپنے بیڈ کو فوراً میک اپ کر دیا کریں. بیڈ کو میک اپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سرخی پاؤڈر وغیرہ لگا دینا نہیں ہوتا, بلکہ اس کو جو ہے وہ تہہ کر دینا ہے, تکیوں کو اپنی جگہ پہ رکھ دینا ہے, چادر اور کوئلٹ یا بلانکٹ وغیرہ جو کوئی بھی ہے اس کو فولڈ کر کے اچھے سے اس کے اوپر رکھ دینا ہے. بچوں کی بھی یہی عادت ڈالیں کہ جب بھی وہ صبح اٹھیں تو اپنے تکیے کو, اپنے کمبل کو اور اپنے بیڈ کو اسی وقت ٹھیک کر دیں. یہ صرف 2 منٹ کا کام ہوتا ہے, جب یہ عادت ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا. شروع میں ہو سکتا ہے 5 منٹ لگ جائیں اس کے اندر, خصوصاً بچے ہوتے ہیں چھوٹے جب ہوتے ہیں, تو اگر کوئلٹ وغیرہ زیادہ بڑا ہے تو ان کے لیے فولڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, تو ان کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے, تو بڑے اس وقت ان کو ہیلپ کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہینڈل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو عادت جب ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو پھر اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا, تو 2 منٹ کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے. تو بچوں کو اپنے بیڈز میک اپ کرنے کی جو ہے وہ عادت ماں باپ نے ہی ڈالنی ہوتی ہے, جب خصوصاً ماں نے ڈالنی ہوتی ہے, جب جب اگر باپ جو ہے وہ گھر میں ہے ہی نہیں یا کسی اور جگہ مصروف ہے کام آپ کے اندر. تو ٹھیک ہے, اسی طرح سے بیڈ روم کے اس میں عادت نے تو یہاں پہ نہیں لکھا, لیکن ڈسٹ وغیرہ جو ہے نا, پھر وہ فرنیچر کے نیچے ایکیومولیٹ مطلب جمع ہو جاتی ہے, ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے, तो जो फर्नीचर आपके मूवेबल हैं, जैसे बेड अगर बहुत ज्यादा भारी बेड है तो उसको तो आप मूव नहीं कर सकते ना, तो बेड के नीचे फिर जहां तक रसाई होती हो तो वहां की जो है वो झाड़ू वगैरह देते रहना चाहिए। अब उसके लिए जो नई किस्म के यूरोपियन स्टाइल ब्रूम्स होते हैं तो उनसे ऐसा झाड़ू नहीं दिया जा सकता, उसके लिए हमारा ओल्ड स्टाइल पाकिस्तानी झाड़ू, ठीक है, जो जिसको हमारी वालदा जो है वो फूल झाड़ू कहा करती थी, तो वो फूल झाड़ू जो है वो बड़ा फायदेमंद होता है। या अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर जो हाथ के जो क्या कहते हैं उसको, डस्टपैन ब्रश जो होते हैं, तो उनके जरिए से जो है वो दफन यानी बिस्तर के नीचे से सफाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि सफाई करने वाले आते हैं ना तो उनको भी है ना याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से सफाई कर लेते हैं लेकिन वो बेड के नीचे हाथ लगा करके सफाई नहीं करेंगे, तो उनको याद करवाना पड़ता है या उनको ताकीद करनी पड़ती है। औरत हैं तो औरतें उनको ताकीद करें, मर्द हैं तो मर्द से उनकी उनको ताकीद करवाएं, ठीक है, तमीज से ऑफ कोर्स, अच्छे अंदाज में, तो उनको जलील और रुसवा करने की बिल्कुल कोई इजाजत नहीं है, उसके बारे में बात हो चुकी है, लेकिन ताकीद बहरहाल करनी पड़ती है। उसी तरीके से स्पाइडर वेब्स वगैरह जहां पे डस्ट होती है ना तो गोले गोले भी बन जाते हैं डस्ट के, खुसूसन यहाँ पे तो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, सऊदी अरब के अंदर सैंड स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं कभी कभी, डस्ट स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो इवन खिड़कियों की ना दरारों से भी वो बहुत ज्यादा अंदर आ जाता है, हत्ता कि जो एसीज होते हैं पुराने जो वॉल एसीज होते हैं तो उनसे तो ये डस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा अंदर आती है, तो इसकी वजह से डस्टिंग की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो अगर डस्टिंग ना की जाए ना तो फिर उनके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, खुसूसन स्पाइडर्स, ठीक है, मकड़े, तो मकड़े की जालियां बन जाती हैं वगैरह, तो इस तरह से फिर सफाई वगैरह करते रहना चाहिए, मूवेबल फर्नीचर को खुसूसन हटा करके उसके नीचे सफाई करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद ड्रेसर की सफाई, ड्रेसर खवातीन की एक बड़ी स्पेशल चीज होती है, उसके ऊपर जो होती है उनकी ड्रेसिंग यानी मेकअप वगैरह का सामान भी होता है, कंघी ब्रश ये सब दराज में भी होते हैं, लेकिन उसके टॉप के ऊपर भी आईना भी लगा होता है और परफ्यूम बॉटल रखी हुई हैं, इतर की शीशियां रखी हुई हैं, तो उसके बारे में हजरत जी फरमाते हैं कि फिर जो घर में औरतों के लिए ड्रेसर होता है उसके टॉप को रोजाना साफ करना चाहिए, ठीक है, रोजाना का लफ्ज जो है वो जरा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन क्वाइट ऑफन तो कह सकते हैं ना, अक्सर जो है वो उसको साफ करते रहना चाहिए। अगर आपके यहाँ उस किस्म का निजाम है कि जी रोजाना डस्ट नहीं आती, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहती हैं और किसी ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पे खिड़कियां वगैरह खुली होती हैं तो फिर तो शायद रोजाना की जरूरत पड़े, लेकिन यहाँ पर बाहर या तो शदीद सर्दी होती है या शदीद गर्मी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर का टाइम बहुत कम होता है, तो इस वजह से ना खिड़कियां वगैरह खोलने का कोई सिस्टम नहीं, खिड़कियां बंद रखनी जरूरी होती, तो उसमें फिर होता है कि डस्ट आती तो है लेकिन उसको आने में जरा सा टाइम लगता है, तो उसके बगैर भी गुजारा हो जाता है, रोजाना के बगैर भी। तो आपके अपने यहाँ पे रहते हैं तो उसके हिसाब से इनके टॉप्स को जो है वो साफ करते रहना चाहिए, इसमें 5 मिनट लगते हैं, हर चीज को अलग कर देना और उसकी सतह को साफ करना और फिर हर चीज को पोंछ कर दोबारा रखते जाना, ठीक है, क्योंकि जब इस तरह की टॉप होती है तो अब नीचे जो है वो डस्ट जमा हुई भी है, तो अगर आप ऊपर से चीजों को हटाएंगे नहीं तो नीचे की डस्ट क्लियर नहीं हो सकेगी, तो उसका तरीका आम जुबान में इस तरह से भी समझाया जाता है कि एंड टू एंड, एक एंड से शुरू करें, एक कोने से शुरू करें और दूसरे कोने तक सफाई करें। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि या तो आप छोटी चीज है, छोटा ड्रेसर टॉप है, सारी चीजों को उठा करके कहीं और रख दें और फिर अच्छे से जो है वो टॉप को साफ कर दें और फिर उसके बाद चीजों को पोछते रहें और वापस रख दिए, पोछते रहें और वापस रख दिए। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक एंड की चीजों को उठा करके दूसरे एंड पे रख दिया, सबको क्लटर कर दिया ना दूसरे एंड पर, फिर जो एंड आपकी अब क्लीन हो, जो यानी क्लियर हो गई है उसको जो है वो मॉप कर दिया, और फिर जो है वो जिस एंड में आपने सारी जगह चीजों को जमा कर दिया था वहां से उठाते गए और उसको पोछ पोछ करके यहाँ पे रखते गए जो साफ हो चुकी है, फिर यहां से उठाते गए, फिर जो साफ वाली जगह है उस पर रखते गए, इस तरह से आप सारी चीजें इधर मूव हो गई और ये वाली साइड खाली हो गई, तो अब इस वाली साइड को जो है वो साफ कर दिया, इसको कहते हैं क्लीनिंग फ्रॉम एंड टू एंड, ताकि कोई स्पॉट छूटने ना पाए। ठीक है। और उसी तरीके से जो जो वर्टिकल सर्फेसेस होती हैं, ठीक है, उमूदी ऊपर से नीचे तक, तो उसमें फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये जो क्लीनिंग एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनसे भी हमने जरा रुजू किया तो पता चला कि टॉप टू बॉटम क्लीनिंग जो है ना वो, और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, रुजू करना तो खैर वो तो बहरहाल पढ़ा लिखा था कहीं पे पढ़ लिया, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है ना, टॉप टू बॉटम क्यों? जाहिर सी बात है कि जी टॉप पे जब आप साफ करेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी डस्ट जो है वो नीचे गिरेगी। अगर आपने नीचे पहले साफ कर दिया था फिर उसके बाद ऊपर साफ करेंगे तो फिर ऊपर की डस्ट दोबारा नीचे गिर जाएगी, ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा जो है फिर से गंदा हो जाएगा। इस वजह से जो इस तरह की सर्फेसिस होती हैं जैसे आईना या इस किस्म की कोई और चीज, उसको ऊपर से साफ करना शुरू करना है और फिर उसको नीचे का आखिर में साफ करना है, ठीक है। और गर्दो गुबार के रास्ते जो भी मुमकिन आपको नजर आए तो उन रास्तों को जो है वो बंद करने की कोशिश कर लें जितना कर सकती हैं। लेकिन एक और बात ये भी है कि अच्छा, ये टॉप टू बॉटम को वाइप डाउन करना भी कहते हैं अंग्रेजी में ना, वाइप डाउन यानी ऊपर से नीचे तक वाइप करना। अच्छा, एक और भी चीज के इस तरह से जो चीज जो जो जगह बंद रहती है ना, तो बेशक डस्ट जो है वो आप डस्ट में तो आपको कुछ फायदा हो जाता है कि बाहर से डस्ट नहीं आती, लेकिन वेंटिलेशन फिर भी जरूरी होती है, ठीक है। तो अगर बहुत अरसे तक इस तरह से बंद रखा रहे ना तो इवन जरासीम और बैक्टीरिया वगैरह जो है वो भी फिर इस तरह के माहौल के अंदर आसानी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स जो है वो बीमार पड़ गया घर के अंदर, बाहर गया था, बच्चा गया था बाहर, बच्ची गई थी, आप खुद कहीं किसी जगह पे गई थी, वहां पे किसी को जो है वो कोई वायरल इन्फेक्शन लगा हुआ था, आपको भी लग गया, अब आप घर के अंदर आई तो अब आपका जो वायरल इन्फेक्शन है ना वो फिर दूसरों को लग गया, फिर दूसरे से तीसरे को लग गया, तीसरे से चौथे को लग गया, ठीक है। तो अब ये कंटेन रहता है घर के अंदर, ठीक है, तो डॉक्टर्स फिर उसके ऊपर ये भी कहते हैं कि घर की जो है ना खिड़कियां वगैरह खोल दें दिन के अंदर कुछ टाइम के लिए, घर की खिड़कियां वगैरह खोल दें, डस्ट बेशक बाहर से अंदर आएगी लेकिन ये वायरसेस जो है ना इनको निकलने के लिए भी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये बाकायदा डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं, वेंटिलेशन यानी हवा का की आमदोरफ्त जो है वो भी बहुत अहम है। तो ये अब इसके लिए जाहिर है अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है, ये कोई लिखा पढ़ा उसूल नहीं है कि भाई इतनी देर जो है वो आप बंद रखें, इतनी देर जो है आप खोल दें, इसको अपनी अकल के हिसाब से इसका फैसला, इसके ऊपर कोई वही नाजिल नहीं हुई कि इसमें वही को फॉलो करना पड़ता है, बल्कि अपनी अकल के हिसाब से इन चीजों को तय करना होता है कि कितनी देर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ खिड़कियों को खोलना और कितनी देर जो है मैं इसको बंद रख सकती हूँ। इसके बाद बाथरूम की सफाई, 7 मिनट क्लास के ओवर हो चुके हैं लेकिन बाथरूम की सफाई भी अगर हम जल्दी से आपकी करने की कोशिश कर लें, इसमें ज्यादा हमने कॉमेंट्स भी लिखे हुए थे। खैर, इसके बाद फरमाते हैं कि सबसे अहम काम गुसल खाने का है, ठीक है, यानी जहां पर अपने आप को अपने जिस्म को साफ करते हैं ना उसकी सफाई सबसे ज्यादा अहम, ये हमारे शेख साहब फरमा रहे हैं, तो किसी ना किसी हिकमत की वजह से ही फरमा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे अहम काम गुसल खाने का है, खास तौर पर गुसल खाने बहुत गीले रहते हैं और गंदे रहते हैं, गुसल खानों को बहुत साफ रखना चाहिए, गीले रहते हैं गंदे रहते हैं। क्या मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्कों के अंदर, मुसलमान घरों के अंदर जो है ना वो जो बाथरूम के फर्श होते हैं तो उनके अंदर ड्रेनेज का इंतजाम होता है, ठीक है, तो पानी जो है वो फिर हम यूज करते हैं ज्यादा, जरा ज्यादा बेतकल्लुफी के साथ पानी इस्तेमाल करते हैं, जमीन पे गिर भी गया तो चलो ड्रेनेज तो है ना, तो ड्रेन से जो है वो निकल जाएगा। जो काफिरों के मुल्क होते हैं गोरों के, खास तौर पर यूरोप अमेरिका वगैरह, तो वहां पे ना ये जमीन पे ड्रेनेज का इंतजाम नहीं होता, इसी वजह से वहां पे जो है ना ये मुस्लिम शावर्स टाइप की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको इस्तेमाल करना है आप बाहर से कोई बोतल शोतल के अंदर पानी लेकर के जाएं, ठीक है, या अगर घर भी है तो नीचे ड्रेनेज नहीं है, अब जो है वो ड्रेनेज के बगैर ही आपको गुजारा करना है, तो उसके लिए फिर लोग जो है वो कपड़ा उपड़ा बिछाते हैं, कारपेट वो क्या कहते हैं पोचे का तौलिया है या कोई और तौलिया है ताकि जो है वो फर्श जो है वो गीला ना हो, ठीक है। तो जो ज्यादा गीले होते हैं और खुश्क होने का इंतजाम ना हो तो फिर वो डैम्पनेस की वजह से, यानी जो नमी फिर बाथरूम के अंदर रह जाती है ना, तो उस नमी की वजह से भी जो है वो बदबू पैदा होती है और जरासीम पैदा होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बाथरूम की तीन चीजें जो है वो कंपल्सरी, जिसको के बहुत एहतमाम के साथ हर बाथरूम के अंदर होना जरूरी समझे, ठीक है। तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं, घर ऐसे होते हैं कि जहां पर ये तीनों चीजें नहीं होती, या तीन में से कोई दो होती हैं एक नहीं होती, या एक होती है दो नहीं होती, या तीनों नहीं होती। वो कौन सी? सबसे पहला तो डस्टबिन, ठीक है। डस्टबिन बाथरूम में होना लाजमी है, और डस्टबिन भी ऐसा जिसके ऊपर लिड हो, ढक्कन हो उसका, ठीक है, किसी ना किसी शक्ल का ढक्कन हो उसके ऊपर। तो आजकल बड़े आसानी के साथ ऐसे ढक्कन भी मिल जाते हैं जो कि यानी बस हल्का सा आप उनको टैप करें तो वो ऊपर ऊपर हो जाते हैं, और आप जो है वो फिर चीज को अंदर फेंक दें, फिर वो ढक्कन खुद से आकर के बंद हो जाता है। या ये कि पैर की जगह पर जो होता है ना, वहां पर उसको ढक्कन को खोलने की जो है वो बटन सा एक बना हुआ होता है, उसको पैर से दबाएं तो ढक्कन खुल जाता है, और जैसे ही पैर हटाएं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है। लेकिन ये वाले जो होते हैं ना, ये खराब भी बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के महंगे भी बहुत ज्यादा होते हैं, जो खराब आसानी से नहीं होते, लेकिन जो सस्ते होते हैं तो खराब ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से वो वाला जो डस्टबिन होता है ना, कि जिसके के खुद से आकर के बस मैकेनिकली उन्होंने बनाए, इस तरह से होता है कि वो ढक्कन बंद हो जाता है, तो ऐसा डस्टबिन जो है वो लाजमन बाथरूम के अंदर। अच्छा, डस्टबिन भी खाली ऐसे ही नहीं, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि डस्टबिन में बाकायदा एक थैली डाली जाए, ठीक है, जो कि या तो आप अफोर्ड कर सकती हैं तो बाजार से खरीद करके बाकायदा डस्टबिन के अंदर जाने वाली थैलियां मिलती हैं, या जो ग्रोसरी के थैलियां आती हैं, ठीक है, तो उन थैलियों को जो है वो डस्टबिन के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है। तो उससे ये होता है कि डस्टबिन के अंदर की सरफेस जो होती है वो रिलेटिवली साफ ही रहती है, बस थैली जैसी भर गई तो थैली को जो है वो उसमें से निकाला, उसका मुंह जो है वो टाइट से बंद किया और बाहर फेंकने वाली जगह पर रख दिया, फिर नई थैली लगा दी, ठीक है। तो डस्टबिन भी थैली के साथ, ये सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन डस्टबिन ये तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है। फिर उसके बाद वाइपर का होना, वाइपर, वाइपर जो कि आपकी फ्लोर को, आपकी जो जमीन को जो है ना, उसके ऊपर जो पानी वगैरह जमा हो गया तो उसको वाइप करके जो ड्रेन बना हुआ है वहां तक पहुंचा करके उसको ड्रेन के हवाले कर दें। तो बाथरूम में वाइपर होना बड़ा जरूरी है। उम्मीद है कि सबको पता होगा ना वाइपर क्या चीज होती है नीचे उसका। अच्छा, वो वाइपर भी खैर मुख्तलिफ क्वालिटीज के मिलते हैं, कभी बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन फिर जैसे टूट जाए दूसरा फॉरन से मंगवा लें, या घर के अंदर एक दो बैकअप के तौर पर भी रख लें। बाथरूम विदाउट वाइपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है जो कि थोड़ा सा पर हमारे, हम जब बच्चे थे तो उस जमाने में ये लग्जरीज में से आता था, लेकिन अब जो है ना ये उसकी कीमत भी सस्ती हो गई, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह माल वाल भी जो है वो अच्छा खासा उम्मत के ऊपर ज्यादा खोल दिया पहले के मुकाबले में, तो इस वजह से अब ये लग्जरीज में इतना नहीं आता है। टॉयलेट पेपर रोल, टॉयलेट पेपर रोल जो कि यूजली जो कमोड होता है उसके राइट साइड पे उसका कोई चीज लगा दी जाती है होल्डर, तो उसके अंदर वो टॉयलेट पेपर रोल जो होता है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। वो भी ऐसा होना चाहिए, एक तो राइट साइड पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हाथ जो होता है वो गंदगी के लिए इस्तेमाल होता है, उससे जो है वो इन चीजों को नहीं पकड़ा जाए, ठीक है। बहरहाल राइट पे रखें, या आप अगर लेफ्ट पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो तो लेफ्ट पे रख लें, जो भी कर लें, लेकिन वो होना जरूर चाहिए। और जैसे ही वो खत्म हो रहा हो बाथरूम के अंदर, तो दूसरा जो है ना वो ला करके रख देना चाहिए जाए, ताकि जैसे ही वो खत्म हो वैसे ही दूसरा जो प्लेस हो जाए। अगर बाथरूम में आपके ऐसी जगह हैं कि जहां पे उसको स्टोर किया जा सकता है, तो इस तरह की जो नेसेसिटीज हैं उनको बाथरूम के अंदर ही स्टोर कर लिया जाए, ठीक है। तो अब जब हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि सबसे अहम काम तो गुसलखाने का है, खासतौर पर गुसलखाने बहुत गीले रहते हैं और गंदे रहते हैं, तो गुसलखानों को बहुत साफ रखना चाहिए। इंसान की सफाई का अंदाजा उसके वॉशरूम से होता है कि ये कितना साफ है। हमें याद है कि हम यानी नई नई शादी हुई थी, चंद साल ही, बच्चे भी नहीं थे, तो अमेरिका में रहते थे, वहां पर आपको पता है कि जमीन, अभी बताया भी था कि जमीन में कोई ड्रेनेज वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से ना लोगों के बाथरूम्स के अंदर से स्मेल आ रही होती थी, ठीक है। तो हमारे घर में कोई उलमा की एक फैमिली आकर के रुकी, माशाल्लाह मशायख में से भी थे, उलमा में से भी थे, तो मेरी वाइफ ने मुझे बाद में बताया
कि वो जब हमारे घर के बाथरूम से निकली ना, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे घर का वॉशरूम मुझे साफ मिला, वरना अक्सर घरों के अंदर जो है ना वॉशरूम से स्मेल आ रही होती। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक अदा फरमाई। तो बाथरूम की सफाई से जो है ना वो इंसान की सफाई का अंदाजा होता है। इसी तरह मदारिस में अगर कोई बंदा जाए तो मदारिस की सफाई का अंदाजा वहां के वॉशरूम से होता है कि वॉशरूम्स कितने साफ हैं। हर बाथरूम को, मदारिस जो होती है वो कोई पब्लिक प्लेस नहीं होती है ना, मस्जिद तो एक तरह से पब्लिक प्लेस भी होती है, वहां पे तो जो आ रहा है जो जा रहा है तो आपको पता भी नहीं होता कौन आ रहा है, लेकिन मदारिस इज अ मोर प्राइवेट एंटिटी। ठीक है, तो इस वजह से मदारिस के बाथरूम जो हैं वो फिर मदारिस वालों की सफाई का की इंडिकेशन करते हैं। हर बाथरूम को रोजाना फ्रेशअप करना चाहिए, यानी साफ सुथरा करना चाहिए, उसमें वाइप भी करें और रोजाना स्प्रे भी कर दें। ठीक है, जो यानी जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं उनको भी बाथरूम के अंदर ही रखना चाहिए, ताकि जो है वो उनको इस्तेमाल आसानी के साथ किया जा सके। एक दफा इंसान बाथरूम से बाहर निकल जाता है ना, तो बाहर निकलने के बाद वो बाहर के काम जो उसके चल रहे थे वो वापस आ जाते हैं, वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाथरूम में क्या चीज थी वो जहन से निकल जाती है। अब जब नेक्स्ट टाइम बाथरूम जाते हैं ना, तब याद, अच्छा ओहो मुझे तो ये काम करना था, बाथरूम में ये सफाई करनी थी, वो करना था, ये करना था, लेकिन बाहर निकल के सब भूल गए। इसी वजह से बाथरूम की चीजें बाथरूम के अंदर ही हो तब जो है वो आसान होता है, वरना फिर बाहर निकल करके इंसान भूल जाता है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि मेरे घर पे कहते हैं लड़की को देखने जाओ तो किचन और वॉशरूम देखो कितना साफ है, उससे लड़की की मिजाज का पता चलता है। जी जाहिर है, अब ये उसूल तो खैर है अपनी जगह पर, लेकिन अब हमने तो सुना कि कुछ कल्चर्स के अंदर ये बड़ा यानी रिलीजियसली इसको फॉलो किया जाता है कि जो लड़की देखने के लिए जाते हैं ना, तो वो बाकायदा किसी बहाने से जा करके किचन के अंदर भी फ्रिज खोल करके देखती हैं। ठीक है, फ्रिज के अंदर देखती हैं कि वहां पे जो है वो कोई सड़ी हुई चीज तो नहीं पड़ी हुई है, या जो है वो कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है वगैरह। ठीक है, तो बहरहाल ये तरीके कितने इफेक्टिव हैं, कितने फायदेमंद हैं, किरदार विरदार देखना तो पुरानी बात हो गई ना, ओल्ड फैशन हो गया। अब किचन देखती हैं और बाथरूम देखती हैं। ठीक है भाई, किरदार ज्यादा अहम था, किरदार पहले देखें, दीन पहले देखें, और किचन बाथरूम भी अगर देखने की जरूरत पड़ जाए तो देख लें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब जो है वो बहाने बहाने से घर के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। ठीक है, बहरहाल चले, जो भी है, लोगों की हिम्मतें वक्त के साथ साथ डेवलप होती हैं। अच्छा, तो जब इंसान शावर ले ले तो उसके बाद वॉशरूम को दोबारा ड्राई करवा देना चाहिए, यानी कर देना चाहिए, कौन दूसरा आकर के करेगा वॉशरूम को ड्राई, और फिर उसमें रूम फ्रेशनर भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखने में इतना अहम नजर नहीं आता, मगर इसका लोगों की तबीयतों पर बड़ा असर पड़ता है। गंदे कपड़ों को वॉशरूम से निकालने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, यानी वॉशिंग मशीन में से गंदे कपड़ों को निकाल करके उनको ड्रायर में डाल देना, या ड्राई करने के लिए जो भी आपके पास निजाम है, चाहे बालकनी के अंदर आपने रस्सियां बांधी हुई हो, या जो है वो जो रैक्स मिलते हैं उनको खोल करके उनके ऊपर लॉन्ड्री से कपड़े निकाल करके स्प्रेड कर देना, ये जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, वरना जो है वो वॉशिंग मशीन के अंदर बिसांत यानी स्मेल जो होती है वो कपड़ों के अंदर पैदा हो जाती है। टॉयलेट क्लीनर्स औरतें कई मरतबा स्टोर के अंदर स्टोर कर लेती हैं और वक्त वो मिलता नहीं है। ठीक है, टॉयलेट के खास जो क्लीन करने के लिक्विड्स होते हैं, या टॉयलेट बोल के अंदर, बोल बाउल जो है ना, बाउल का लफ्ज हम लोग अक्सर, क्योंकि जाहिर है हमारी जुबान तो नहीं है ना अंग्रेज, अंग्रेजों की जुबान है, तो हमें पैर नहीं पता होता, तो हम बाउल का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं बोल की जगह। तो बाउल का जो लफ्ज है ना, ये दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाउल मूवमेंट, यानी जिसको कब्ज हो जाए ना तो उसको कहते हैं कि इसको बाउल मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो बाउल का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है अंग्रेजी के अंदर। अगर अंग्रेजी बोलनी है तो फिर अंग्रेजों के तरीके से बोलने तो ज्यादा अच्छा नहीं है, अरबी बोलें लेकिन उर्दू के तरीके से बोलें तो जाहिर है गलत बात होती है ना, तो अरबी तो अरबों के तरीके से बोलनी चाहिए, उसी तरह अंग्रेजी भी अंग्रेजों के तरीके से, आपको खैर बुरी बात नहीं है, ठीक है हमें क्या, लेकिन कम अज कम उसमें बहुत ही वो वाला मानी बहुत ज्यादा बदल जाता है। एनीवे,
तो टॉयलेट बोल जो होता है तो उसके अंदर की जो जगह होती है ना उनको क्लीन करने के लिए खास किस्म के ऐसे स्प्राउट्स मिलते हैं कि जिससे कि जो है वो लिक्विड तेजी से बाहर निकलता है, और फिर उन जगहों पे जाकर के उनको छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो लिक्विड जो होता है ना उसके अंदर एसिड होता है, ब्लीच होता है, वो फिर उसके इन जो छुपी हुई तहें होती हैं उनको फिर खुद से वॉश करता है, क्लीन करता है, और फिर उसके बाद उसको ब्रश से रगड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बाथरूम की क्लीनिंग जो होती है ना ये एक हुनर भी होता है, और ये फिर तज़किया नफ्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तज़किया नफ्स, क्योंकि बाथरूम एक गंदी जगह होती है ना और एक नीची किस्म की जगह होती है, तो उसको साफ करने से तबीयत जो होती है ना वो कराहियत होती है उसके अंदर। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ खादिमों से बाथरूम साफ करवाते, ठीक है, लेकिन हमारे मदारिस के अंदर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी एहतमाम होता है कि बच्चों के जो है ना वो कुछ तरबियत वगैरह भी हो और तजकिया वगैरह भी हो, तो वहां पर बाथरूम भी साफ करवाए जाते हैं बच्चों से। अब जाहिर है बाहर वाले आते हैं कहते हैं बच्चों पे जुल्म हो रहा है, भाई जुल्म नहीं हो रहा है, बच्चों के ऊपर एहसान हो रहा है कि उनका जो है ना नफ्स का भी तजकिया किया जा रहा है। तो बाथरूम साफ करवाना अपने बच्चों से पहले खुद करना, फिर उसके बाद बच्चों से भी करवाना, और फिर इसको जो है वो अपने लिए बुरा ना समझना। हत्ता के मशाइख की किताबों में जैसे बा अदब बा नसीब जैसी किताबों के अंदर ये बात भी मौजूद होती है कि जो अच्छे सालिकीन होते हैं वो अपने पीर भाइयों या पीर बहनों के बाथरूम साफ करने में भी कोई आर महसूस नहीं करते। ठीक है, ये दो चीजें हमारे मशाइख के यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। कितनी इफेक्टिव होती हैं वो तो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर, कि बाथरूम साफ करना इससे तस्किया नफ्स होता है, और पैर दबाना, पैर दबाना, ठीक है, इससे भी तस्किया नफ्स होता है, लेकिन खाली इससे तस्किया नफ्स नहीं होता। कभी कभी पैर दबाने वाले भी खूब मोटे होते हैं, पैर तो दबा रहे हैं लेकिन नीयत अच्छी नहीं है ना, तो वो भी नफ्स मोटा हो रहा होता है, वो पैर दबाने में भी नफ्स मोटा हो रहा होता है, बाथरूम साफ करने में भी नफ्स मोटा हो रहा होता है। इस वजह से इट्स अ होल पैकेज, ऐसा नहीं होता कि बस बाथरूम साफ करेंगे तो तस्किया नफ्स हो जाएगा या बस पैर दबाएंगे तो तस्किया नफ्स हो जाएगा, नहीं, इट कम्स विद अ पैकेज। ठीक है, बहरहाल ये चीजें जिसको भी समझ में आ गई सो आ गई। ससुराल भी तस्किया करता है बहू से, बाथरूम साफ करवाते हैं। हाँ, ससुराल जो है वो तस्किया करता है, बाथरूम का तो तस्किया हो जाता होगा, बहू का तो शायद इससे बिल्कुल भी तस्किया नहीं होता। तो ये तस्किया जो है ना वो पहले ही कर लें, ये ना हो कि ससुराल के जरिए से करवाना पड़ जाए अल्लाह ताला को, ठीक है ना, ये अल्लाह ताला करवा रहे होते हैं, दरअसल ससुराल वाले नहीं करवा रहे होते हैं, ये अल्लाह ताला ससुराल के जरिए से तज़किया करवा रहे होते हैं। बेहतर ये है कि ससुराल से पहले खुद अपने इल्म और इरादे से अपना तज़किया कर ले, या अपनी औलाद की तरबियत के दौरान ही उनको ये तज़किये की बातें जो है वो सिखला दें। अल्लाह ताला तज़किया फरमाते हैं ना जब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के जरिए से, ठीक है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, वाली बात हो जाती है। अच्छा, ना तो हमने टाइम दे दिया आपका, आप तो भी जाके नहीं देते, तो चले फिर हम ये इस टॉपिक को बस मुकम्मल पढ़ रहे हैं कि गंदे कपड़ों को वॉशरूम से निकालने में, अच्छा ये टॉयलेट क्लीनर्स औरतें स्टोर में रख देती हैं, फिर वक्त के ऊपर वो मिलता नहीं है, उसको टॉयलेट के अंदर ही स्टोर करना चाहिए। शावर क्लीनर भी टॉयलेट में ही स्टोर कर लेना चाहिए, सिंक के नीचे या कोई जगह ऐसी हो जहां पर वो चीजें आसानी के साथ पड़ी रहें और मौके पर मिल भी जाए। तो बाथरूम में कोई कैडी या कोई बकेट वगैरह इस तरह की रख लें, अगर ड्रॉर्स वगैरह नहीं है तो कैडी या बकेट वगैरह रख लें, उसके अंदर इन चीजों को स्टोर कर लें। डिस इन्फेक्टेंट गोलियां जो होती हैं, जिसको हमारे यहाँ फिनाइल की गोलियां कहा जाता है, वो भी बाथरूम के लिए लाजमी चीज है, तो उनको भी अगर बाथरूम में स्टोर कर सकें, जैसे कभी वो कॉकरोच वगैरह नजर आ जाते हैं, वो बाथरूम के ड्रेन में से निकल कर कॉकरोच आ गया, तो फौरन जो घर की खवातीन होती हैं वो उसके अंदर उसके ऊपर फिनाइल की गोलियां वगैरह डालती हैं। ठीक है, आखिरी बात बिल्कुल, कि जो ड्रेन होता है ना उसके ऊपर जो जाली लगी हुई होती है ना वो भी ऐसी होनी चाहिए कि वो फिक्स्ड हो, ठीक है, क्योंकि इन ड्रेन्स के अंदर फिर अल्लाह की दूसरी मखलूक रहती है, जिनमें से एक मखलूक होती है चूहा, ठीक है, तो वो चूहा जो होता है ना उसकी बड़ी ये सिफत होती है कि वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, और फिर जहां उसको मौका मिले, जहां उसको जगह मिले ना, कि वो उसको पुश करके घर के अंदर आ जाए, तो वो आ जाता है फिर, ठीक है। तो चूहे को अपने घर से दूर रखना है, तो और किसी जगह पे दिखता नहीं, कहीं पे कोई सांप वहां भी अगर ऐसी जगहों पे रहते हो, तो इनसे घर को महफूज रखने के लिए जो ड्रेन के ऊपर जाली है वो फिक्स्ड जाली होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें तो ये काफी फायदा देने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे हम आज की क्लास मुकम्मल करते हैं। इबादत के साथ हमने तकरीबन आधा घंटा जो है आपसे ज्यादा ले लिया, अल्लाह ताला हमें भी माफ फरमाए इसके ऊपर, और आपके जो काम है जो उसके ऊपर आपसे माफी मांगते हैं। वह आपको दावाना अलहमदुल्ला।